हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चे, सर्वविद्धि निषेदास्यो। एतयोरेव किंकर आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न परा, वंशी विभूषितकरा, नवनीरधाभा, पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठा, पुरलींद्र सुंदर मुखान, अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः, स्तुवन्ति देवयेस्तवे, वेदे सांगपत क्रमोपनिषदि, गायन्ति यम सामगा, ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः, नारायणं नमः। సంస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయామధీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర భవతి నైష్టికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్త రూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసది గౌర భక్త వృంద హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి గ్రంథ శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ కీ జయ అధ్యాయ 17 पहला स्कंद अध्याय 17 जिसका शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 38 इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः शब्दार्थ सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा अभ्यर्थितस् अभ्यर्थित मतलब इस प्रकार से निवेदित तदा उस समय तस्मय उसको स्थानानि स्थानों को कलये कली को ददाओ अनुमति प्रदान की द्यूतम यानी जुआ खेलना पानम यानी मध्यपान करना स्त्रिया स्त्रियों से अवैध संबंध रखना सूना पशुवत करना यत्र जहां भी अधर्म पाप कर्म चतुर्विदः चार प्रकार के अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना शराब पीना वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होता हो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से हमें समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीला प्रभुपाद जी के तो अधर्म के मूल सिद्धांत यथा अहंकार वेश्यावृत्ति मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या स्वच्छता दया तथा सत्य के विरोधी हैं कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने अनुमति दी है वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान वैश्यालय मदिरालय तथा पशु वध शाला यानी कसाईगढ़। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि धर्म के मूल चार सिद्धांत क्या है, जो अधर्म के मूल चार सिद्धांत जो हमें पहले श्लोक में पढ़े थे, श्लोक नंबर 24 में, जिसमें बताया गया था कि तपः शौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता, कि कृता यानी सत्युग में चार पैर जो धर्म के थे वो बिल्कुल ठीक से, कौन से, तपः तपस्या शौचम पवित्रता, दया मतलब कृपा और सत्यता, ये चार पैर बिल्कुल ही ठीक थे। और उसके बाद क्या हुआ, अधर्माश्चैस्त्रियो भगना, अधर्म के कारण तीन भग गए यानी टूट गए, क्या वो, स्मय संग संगम अदयस्तवा, स्मय मतलब अहंकार के मैं भोगता हूँ, संग यानी स्त्री संग, मदय मतलब नशा। तो परीक्षित महाराज ने धर्म रूपी बेल को कहा कि क्योंकि अधर्म बढ़ गया है और तुम्हारे ये तीन पैर जो टूट गए हैं उसका कारण क्या है, अहंकार है, स्त्री संग है और दूसरा मदुरापान है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे कि अधर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं, जिसके कारण टूटते हैं, अहंकार, वेश्यावृत्ति और नशा, ठीक है, तथा असत्य भाषण से, ये धर्म के चार सिद्धांत हैं। और अधर्म के चार सिद्धांत कौन से हैं, तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक अधर्म का बेल है और एक धर्म का बेल है, सब दोनों में सदैव युद्ध रहता है। और ये हमारे ऊपर है कि हम धर्म के बेल को जीतने के लिए प्रेरित करते हैं या अधर्म के। और धर्म के बेल के पैर कौन से हैं, तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। और अधर्म के पैर कौन से हैं, वेश्यावृत्ति और मांसाहार करना, शराब पीना और असत्य भाषण। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने अनुमति दी है वे हैं, द्यूत क्रीड़ा का स्थान यानी जुआ खेलना, वैश्यालय अवैध संग करना, मदरालय जहाँ शराब पिया जाता है, और पशु गाशाला, पशु वधशाला यानी कसाईघर। अधर्म के मूल सिद्धांत कौन से हैं, अहंकार, वैश्यावृत्ति, मादक द्रव्य तथा असत्य भाषण, ये अधर्म के मूल सिद्धांत हैं। और धर्म के मूल सिद्धांत कौन से हैं, तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से इन दो बेलों में सदैव युद्ध रहता है, अधर्म का बेल आगे बढ़ना चाहता है और धर्म के बेल को हमें आगे बढ़ा के अधर्म पर विजय प्राप्त करनी है। तो उसके विरोधी ये बेल होते हैं। और कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने अनुमति दी है वो कौन से हैं, स्त्रीय पानम, द्योतम पानम, स्त्रीय सोना यानी जुआ खेल, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, द्योत क्रीड़ा का स्थान, और वैश्यालय जहाँ पर अवैध संग किया जाता है, मदरालय जहाँ पर शराब पिया जाता है, और पशु वधशाला जहाँ पर के पशु का वध किया जाता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी श्रील जीव गोस्वामी के निर्देशन को बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि श्रील जीव गोस्वामी निर्देशन देते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध मद्यपान तथा सौत्रामणी यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुघात, ये अधार्मिक है। यानी ये चार जो काम है, कौन कौन से काम है, शराब पीना शास्त्रों के विरुद्ध है, और एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें पशु की बलि दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, सोत्रामणि यज्ञ, उसको अगर नहीं करते तो पशु का ना जो मांस होता है वो खाना बहुत बड़ा अपराध होता है, और बिना विवाह के स्त्री के साथ संगति करना बहुत ज्यादा अपराध होता है, और शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध करना बहुत बड़ा अपराध है, ये सब अधार्मिक कृत्य है। और वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं और निवृत्तों यानी जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए दो भिन्न प्रकार के आदेश हैं। अब देखो इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति लोग कौन से होते हैं जो दुनिया के भोगों में लगे होते हैं, और निवृत्ति लोग कौन से होते हैं जो निवृत्त हैं, भौतिक भोगबंधन से बिल्कुल निवृत्त हैं, और उन दोनों के लिए वेदों में अलग अलग आदेश है। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अब जिनको भोग भोगने की इच्छा है उनको भी ऐसे नहीं, खुली सी छूट नहीं दी गई जानवरों की तरह कि जिसके साथ जाके संभोग करना है करो और जो कुछ खाना है जिस टाइम पर खाना है जाके करो। नहीं, उनको जीवन में ऐसे अपने जीवन को नियमित करना है कि वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अतएव जो लोग अत्यंत अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं, उन्हें सोत्रामणि यज्ञ करके, सुरापान करने, विवाह करके, स्त्री प्रसंग करने तथा यज्ञों के द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। यानी कि ये शास्त्रों में इन लोगों को क्या कहा गया है? सबसे पहले बताया जो अत्यंत ही अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जिनके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है ना शास्त्रों के अनुसार, वो तो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं। निवृत्ति मतलब जो भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो इंद्र तृप्ति के लिए सोचते ही नहीं है, जिनको ज्ञान हो जाता है ना, तो वो ज्ञानवान क्या करता है, भगवान की शरण में आ जाता है, फिर वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन अतएव जो लोग अत्यंत अज्ञानी है, जिनको ये बात समझ में ही नहीं आई है कि हम आत्मा हैं और हमें आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना, ये उनकी बुद्धि में अभी तक बात आई नहीं है, तो उनकी इच्छा क्या होती है, इंद्र तृप्ति की इच्छा होती है, तो वो क्या करते हैं, सूरा यानी शराब पीने की इच्छा करते हैं। तो शराब पीने के लिए क्या किया जाता है, एक सोत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने का, और उनको स्त्री के साथ संग करने की इच्छा होती है तो विवाह करके स्त्री प्रसंग करने का, और यज्ञों के द्वारा मांस खाने का कभी कभी उसकी अनुमति दी जाती है। और वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई खास वर्ग होता है, जैसे क्षत्रिय हैं वो ये कर सकते हैं, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। तो ये क्योंकि वेदों में बताया गया है, तो ऐसे लोग अगर करते हैं, वो इनके अनुसार अगर करते हैं, शराब पीना और मांसाहार और अपनी पत्नी के साथ संभोग, तो ये अधर्म नहीं है। किसी का भोजन दूसरे के लिए विष होता हो सकता है। इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सत्तोगुणियों के लिए विष हो सकता है। अभी देखो, निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रवृत्ति लोग होते हैं यानी भौतिक भोग के लिए लगे रहते हैं, उनके लिए तो ये सब चीजों के लिए अलाव किया गया, लेकिन जिस तरह से सत्वगुणियों का जो तमोगुणियों का जो भोजन है वो सत्वगुणियों के लिए विष समान है। अतिमिश्र जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी जाति के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अब जो अधर्म है सो है, शास्त्र ने कह दिया यत्रा धर्म, यहाँ पर साफ साफ लिखा है द्युतम पानम स्त्रीय सुना यत्रा धर्म चतुर्विदा, ये चार अधर्म हैं। अभी क्षत्रियों को किसी किसी टाइम पर, क्योंकि क्षत्रियों की जो ड्यूटीज होती थी पहले, वो राजा होते थे और अलग अलग जगहों पे उन्हें जाना पड़ता था, मतलब आखेट किया करते थे, शिकार करते थे, और फिर उनकी लाइफ जो होती थी थोड़ी सी राजसी होती थी, तो इन चीजों की कुछ कुछ हद तक उनको अनुमति दी जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा कर सकता है। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के लिए, कि असल में तो अधर्म है, लेकिन इनको यदि कोई खुली छूट करके अगर करेगा तो फिर सब अधर्मी हो जाएंगे। लेकिन क्यों बताया गया, ताकि धीरे धीरे क्रमशः धर्म के पथ पर अग्रसर हो सके। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी अध्यक्षों का कर्तव्य है कि अपने राज्य में अधर्म के सिद्धांतों यानी सॉरी महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए क्या उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में अधर्म को घुसने नहीं दिया। उन्होंने कलयुग को साफ साफ बोल दिया कि मैं आपको अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। और सार श्री प्रभुपाद जी बोलते इसी तरह से सारे राज्यों को के समस्त कार्यकारी अधिकारियों का कर्तव्य है कि अपने राज्य में धर्म के सिद्धांतों यानी तप स्वच्छता दया तथा सत्य की स्थापना करें। अगर राज्य में ये चार चीजों की स्थापना हो जाएगी क्या क्या होगा, तपस्या पवित्रता दया और सत्य, तो उनकी स्थापना से और सभी प्रकार के अधर्म को कौन से हैं अहंकार यानी मांसाहार अवैध स्त्री संग या वेश्यावृत्ति मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत सुरापान वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। श्री प्रभुपाद जी बोलते ये स्थान ही हमारे राज्य में होने नहीं चाहिए जहाँ पर के जुआ खेला जाए, जहाँ पर शराब पिया जाए, जहाँ पर अवैध संघ हो, जहाँ पर पशुवध हो। इस ये सारे कार्यों को राज्य से निकाल देना चाहिए और कलयुग को भी इसी तरह से बोलना चाहिए कि जाओ जहाँ पर ये कार्य होते हैं वहाँ पर आप चले जाओ, तो कलयुग को भी वहाँ पर भेज देना चाहिए। जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं उन्हें शास्त्रों के आदेशों से पथ पर लाया जाए, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार इतना शास्त्र के आदेशों को स्प्रेड करना चाहिए कि लोग जो पथभ्रष्ट हो गए हैं वो लाइन पर आ जाएं। किसी भी परिस्थिति में उन्हें राज्य से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। राजा को या गवर्नमेंट को कभी भी इन चीजों के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को द्यूत क्रीड़ा सुरापान वेश्यावृत्ति तथा असत्य को एकदम ठप्प कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये चार अधर्म के कार्य हैं, जुआ खेलना शराब पीना अवैध संग करना और असत्य, इनको बिल्कुल अपने राज्य में अनुमति नहीं, ठप्प कर देना चाहिए मतलब हर तरह से उसको धकेल कर निकाल देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। अभी भ्रष्टाचार का को किस तरह से रोका जाए उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ उस विधि को अपनाना चाहिए। क्या, सबसे पहले एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम दो दिन अनिवार्य उपवास यानी तपस्या, आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे दो दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन भोजन की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव। अभी ये सबसे पहले तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तपः शौचम दया सत्यम, ये चार चीजें राज्य में होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, महीने में दो दिन तक एकादशी का उपवास रखना चाहिए। राज्य सारे राज्यों को यह एक अपने पूरे राज्य में ये नियम बना लेना चाहिए कि महीने में दो दिन सब लोगों को एकादशी उपवास करना है। इससे हर तरह से फायदा, सबसे पहले तो भगवान को प्रसन्न करेंगे, तपस्या से धर्म का चरण जो है, कौन सा चरण है जो तपस्या से बचता है, नशा करने से तपस्या का चरण टूटता है। तो फिर अगर हम लोग उपवास के आदि होंगे, हमें पता होगा कि हमें दो दिन तक उपवास, तो धीरे धीरे नशे की आदत भी छूटती जाएगी। तो सबसे पहले तो भगवान को प्रसन्न करना, दूसरा क्या होगा, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी दूसरी आर्थिक सांसारिक बातें भी बता रहे हैं कि ऐसे आर्थिक दृष्टि से भी हम देखें तो अगर दो दिन तक पूरे राज्य में कोई भी अनाज नहीं खाता है तो लाखों टन भोजन बचेगा और इससे नागरिकों का स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि दिन महीने में दो दिन जो है वो अनाज का त्याग करना चाहिए, ठीक है, उससे तपस्या का चरण बचेगा। दूसरे नंबर पर क्या करना है, तरुण बालकों तथा बालिकाओं का अनिवार्य विवाह होना चाहिए। बस मतलब जैसे ही बच्चे जवान होते हैं उनका विवाह कर देना चाहिए। जब उनकी आयु क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। मतलब अभी यहाँ पर को एजुकेशन होता है, लेकिन क्या होता है कि अगर उनका टाइम पर विवाह नहीं होता है तो क्या होता है कि वो गलत संबंध आपस में रखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन समय पर उनका विवाह हो जाता है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाना चाहिए। अब दूसरा धर्म का चरण है पवित्रता, और पवित्रता तभी संभव है जब अवैध संघ नहीं होता है। अगर अवैध संघ होता है तो जीव अपवित्र हो जाता है, उसकी वृत्ति अपवित्र हो जाती है, उसकी बुद्धि अपवित्र होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो बहुत इजी है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनका विवाह कर देना चाहिए ताकि अवैध संघ की नौबत ही ना है। और दूसरा ये कि ये तलाक का जो है ना वो बिल्कुल मिटा देना चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए। उससे भी वेश्यावृत्ति का प्रोत्साहन होता है कि बस यूज एंड थ्रू वाली बात हो जाती है। तो एक ही पत्नी के ऊपर निर्भर रह के उससे संतुष्ट रखने के लिए अगर करेंगे इसे तो क्या होगा, पवित्रता का चरण भी सुरक्षित रहेगा। और नंबर 3 श्री प्रभुपाद जी कहते हैं राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% दान दें। यानी कि जो भी लोग हैं वो अपनी कमाई का 50% अगर दान में देते हैं, वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश यानी एक कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करें। अब देखो भागवत सिद्धांतों का नंबर 1 क्या है, कर्मयोग के द्वारा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नंबर 2 क्या है, प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत के नियमित श्रवण करें। ये श्रील प्रभुपाद जी भ्रष्टाचार रोकने के लिए मतलब तरकीब बता रहे हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जीवों को ये उपदेश दिया जाए कि आप सारा काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। नंबर 2 प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण। जब हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे तो हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होगा। नंबर 3 क्या है, घर पर या पूजा स्थलों में सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए, संकीर्तन विधि। श्रील चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 चीजें बताई हैं कि क्या करना चाहिए, विग्रह सेवा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भागवतम को श्रवण करना चाहिए और विग्रह सेवा करनी चाहिए, तीर्थ स्थानों में यात्रा करनी चाहिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 4 श्रीमद् भागवतम के उपदेशों में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए, यानी शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और नंबर 5 ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहा करें। यदि राज्य उपर्युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना रहेगी। भगवान की भक्ति अगर मतलब ईश्वर चेतना कृष्ण कॉन्शियसनेस यदि अपने सारे राज्य में फैलानी है तो उसके लिए ये 5 कार्य करने पड़े। और अगर सबकी चेतना ईश्वर चेतना हो जाएगी तो भ्रष्टाचार तो समाप्त होगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते सभी प्रकार का जुआ यानी द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा चरण है सत्य, वो कैसे समाप्त होता है, जुआ खेलने से। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि सट्टेबाजी को भी बंद कर देना चाहिए और इससे पतन होता है। तो यदि इनको प्रोत्साहन मिलेगा जुआ को तो क्या होगा, सत्य का सर्वथा लोप हो जाएगा। तो उपर्युक्त अवस्था से अधिक काल तक तरुण तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रोनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक के सिगरेट पीना, तंबाकू खाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय हो। मुखं कुरु तु वाचालम् पंगु लंगयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। तो आपने देखा महाराजा परीक्षित ने अधर्म रूपी ये जो कली है उसको साफ साफ कहा कि क्योंकि मेरे राज्य में तो भगवान की पूजा होती है, भगवान के लिए यज्ञ होते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवान् निज्यमान इज्यात्ममूर्ति यजतांशं तनोति, कि इस जगह पर तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होते हैं, तो मैं आपको तो नहीं रहने दूंगा। कि क्षेत्रम मदीये त्वम धर्म बंधु न वर्तितव्यम भवता किंचन कथमचन, मैं अपने इस क्षेत्र में आप अधर्म के बंधु को तो रहने नहीं दूंगा। चलो तुम्हें मार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा आदेश है कि आप मेरे राज्य से बाहर निकल जाइए, क्योंकि मेरे राज्य में भगवान की भक्ति होती है। जहाँ पर भगवान की भक्ति होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता है, वहां पर तुम्हारे जैसे अधर्मात्मा अधर्मी के रहने की कोई भी जगह नहीं है। तब कलयुग ने बोला, बहुत ज्यादा कलयुग जो है वो कांपने लगा और परीक्षित महाराज की तलवार को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यमराज मेरे सामने खड़ा है। आवाज निकल नहीं रही थी, कांप रहा था, लेकिन फिर भी अब मरता क्या न करता। कलयुरवाच, वो डरते हुए महाराज परीक्षित को बोलने लगा, यत्र क्ववात वत्स्यामि सार्वभौम तवाख्यया लक्ष्ये यत्र तत्रापि त्वामाते शुरसा शरण रासनम्। तो क्योंकि आपका ही हर जगह पर राज्य है, यत्र क्ववात वत्स्यामि, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ। मैं जिधर भी जाऊंगा तो हर जगह सार्वभौम तवाख्यया, हर जगह पर तो आपका ही राज्य है, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जिधर भी गया त्वाम आतेषु शरासनम। त्वाम मतलब आपको, आतेषु इशु मतलब बाण, और शरासनम मतलब धनुष। जिधर भी देखूंगा आप मुझे धनुष और बाण खड़े लिए हुए दिखेंगे, तो इससे तो अच्छा इधर ही खड़ा होके मार डालो, हर जगह पे तो मुझे आपका भय ही रहेगा, तो इससे बेहतर है आप मुझे यहीं पर मार दो। अगर मुझे सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो तो क्या करो, तन में धर्म व्रता श्रेष्ठ स्थानम निर्देश टू अरहसी, कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ पर यत्रैव नियतो वत्स्य, जहाँ पर मैं सदा रह सकूं। आतिष्ठस्तेनु शासनम, आपके राज्य में कोई छोटा सा स्थान मुझे दे दीजिए जहाँ पर मैं निर्भय होकर रह तो सकूं। कोई एक जगह तो मुझे दे दीजिए, वरना तो हर टाइम पर मुझे आपका भय लगेगा कि अभी महाराजा परीक्षित मुझे मार डालेंगे। आप मुझे कोई तो जगह दीजिए, क्योंकि आप कोई तो ऐसी जगह है नहीं जो आपका शासन जहाँ पर नहीं हो, और आप मुझे बोल रहे हो मेरे राज्य से निकल जाओ, मुझे बताओ मैं किधर जाऊं। मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरणों में मैं सहायता मांगने के लिए आया हूँ, तो आप तो भगवान के भक्त हो, भगवान तो हर अपराधी को स्थान देते हैं अपने चरणों में, तो आप भी मुझे स्थान दीजिए, मुझे कोई तो जगह भी बताइए जहाँ पर मैं रहूँ। तो सूत गोस्वामी आज हमें बता रहे हैं कि अधर्म रूपी कली को महाराजा परीक्षित ने कहाँ पर स्थान दिया। अभ्यर्थितस तदातस्मै अभ्यर्थितस, यानी इस प्रकार निवेदन, जिस तरह से उन्होंने निवेदन किया ना रोते हुए, बहुत ज्यादा दुखी होकर उनकी शरण में आ गया, तो स्थानी कलये ददो, स्थानानी उसको कलयुग को स्थान दे ही दिया महाराज परीक्षित। ये महाराज परीक्षित की करुणा है, ये भक्तों के अंदर जो करुणा का गुण होता है ना, दया का गुण होता है ना, कभी कभी भगवान से भी अधिक हो जाता है। वास्तव में भक्तों, अगर हमसे कभी भगवान का कोई अपराध हो जाए ना, तो भगवान के भक्त हमें भगवान से बचा लेंगे, लेकिन अगर भक्त का कभी अपराध हो जाए तो फिर भगवान भी हमें नहीं बचा सकेंगे। इसलिए भक्तों के सदैव चरणों में रहना चाहिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण में आकर अभयदान प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग को भी अभयदान प्राप्त हुआ और उन्होंने, महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्या किया, स्थानानि कलये ददौ, कलयुग को स्थान दे दिया। कौन कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, द्यूतम जहाँ पर जुआ खेला जाता है, पानम जहाँ पर शराब पिया जाता है, स्त्री जहाँ पर अवैध संग होता है, सोना जहाँ पर मांस आहार किया जाता है। और साफ साफ बताया, यत्रा धर्म चतुर्विद, ये अधर्म है, ये चार अधर्म है, और यहाँ ये चार कार्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कलयुग को बोला तुम भली चले जाओ, वहां पर जाके रहो, क्योंकि महाराज परीक्षित जानते थे कि मेरे राज्य में तो ये अधर्म कोई करता नहीं होगा। और आज भी श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर शिक्षा दी और कहा कि अगर हम चाहते हैं कि कलयुग हमारे राज्य में प्रवेश ना करे, तो इन चार चीजों को अपने राज्य में नहीं टिकने देना चाहिए। द्यूतम, हर प्रकार की जुआ को, सट्टेबाजी को खत्म करना चाहिए और इससे धर्म का चरण बचा रहेगा। पानम यानी हर प्रकार का जो नशा है, चाहे शराब है, सिगरेट है, ये जो भी है, उन सारे प्रकार के नशों को बिल्कुल अपने राज्य में जगह नहीं देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, तपस्या का चरण बचेगा। और इसकी बदली में श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें एकादशी का उपवास रखना चाहिए, जिससे तपस्या का चरण बढ़ेगा और फिर नशा का चरण टूटेगा, तो फिर हमारा अधर्म का जो महल है वो टूट, उसके जो छत है वो गिरने नहीं पाएगी। स्त्री अर्थात अवैध संग, तो अवैध संग करने से पवित्रता का चरण टूटेगा, इसलिए जो संतान जैसे ही युवावस्था में आए उनका विवाह कर देना चाहिए। और सोना यानी मांस आहार करने से दया का चरण टूटेगा, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि भक्तों का संग करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान को प्रसाद अर्पण करके पोए उसके बाद ही खाना चाहिए। उससे क्या होगा, हम मांस आहार से बचेंगे, सोना से बचेंगे, ये चार अधर्म के जो प्रतीक हैं, अधर्म का बेल जो है उसके पांव यदि हम काट देंगे तो हमारे धर्म की सुरक्षा प्राप्त होगी। धर्म को हम घायल होने से, भ्रष्ट होने से बचा सकेंगे। और यही हमारे ये जो चार चीजें हैं ना, वही सिद्धांत है हमारे धर्म की। आज हम इस्कॉन में जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी के किसी भी अनुयायी से दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो इस्कॉन में आते ही हमें ये चार कार्य छोड़ने पड़ते हैं, यानी आते ही हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब चीजें क्यों मना की गई हैं, बाकी भी तो इतने अधर्म होते हैं, लेकिन ये शास्त्र का सिद्धांत है, ये शास्त्र हमें साफ साफ बता रहा है कि ये जो चार चीजें हैं, स्त्रीय पानम सोना, ये सब जो चार चीजें हैं, द्यूतम पानम स्त्रीय सोना, जुआ खेलना, शराब पीना, अवैध संग करना और मांसाहार करना, इसी से अधर्म बढ़ता है। और अगर हम इनको जड़ से काट देंगे तो हृदय के अंदर अधर्म का बीज जो है वो उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रोकना है। जो हम डिवोटी बन गए हैं, हम भक्त बन गए, तो जिनसे हम रिलेटेड हैं उनको भी एटलीस्ट धर्म तक लाना है, पशु से मनुष्य तक लाना है और फिर मनुष्य के बाद उनको भक्त बनाना है, ताकि हम सब आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।